मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के उत्तम क्षमा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज दशलक्षण पर्व की शुरुआत हो गई। आज पहला दिन है। हमें कोई भी चीज अपने जीवन में पानी हो तो सिर्फ कामना करने से वो चीज प्राप्त नहीं होती, उसके लिए प्राप्ति का जो उपाय है, जो पुरुषार्थ है, वो भी हमें करना आवश्यक है। हमें अगर अपने जीवन में धर्म को प्राप्त करना है, धर्म को प्राप्त करने की कामना हमारे मन में है, तो हमें उपाय भी करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रयत्न भी करना पड़ेगा, हमें पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। हर आदमी चाहता है कि उसे दूसरे लोग अच्छा कहें, लेकिन किसी को अच्छा कोई कब कहेगा? जब वो अच्छा होगा तब ना कहेगा, और फिर उस अच्छा होने के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सबसे पहले हम योग्यता हासिल करें फिर कामना करें, कहते ऐसा है। हम अगर अपने जीवन में क्षमा धर्म चाहते हैं तो हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा कि वो क्षमा धर्म किस वजह से नहीं आ पा रहा है। मुझे वो चीज अपने जीवन से अलग करनी पड़ेगी, और जिस चीज के लिए मैं पाना चाहता हूं उसके लिए मुझे प्रयत्न भी करना पड़ेगा। दो काम एक साथ करना पड़ते हैं। जैसे किसी को अपने घर में बुलाना हो तो बुलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कैसे आएंगे निमंत्रण देना पड़ेगा, और फिर बुला लिया तो जगह भी तो करो, बिठा लोगे कहां? और आपका इतना इंप्रेशन है कि उनके बुलाने पर वे आ ही जाएंगे। एक सामान्य सी चीज अपने जीवन में हम ऐसे करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में क्षमा धर्म आए, इसके लिए हमें अपने भीतर क्षमा के जो विपरीत कषायें हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब हमारे भीतर उस क्षमा धर्म के लिए पात्रता आएगी, और फिर वो क्षमा धर्म जो हमारे भीतर आया है उसके लिए भी हमें निरंतर सजग रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। पात्रता हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे पानी बरसे और कोई व्यक्ति अपना कटोरा भरना चाहे तो क्या करेगा? कटोरे को रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, लेकिन कैसा रखना पड़ेगा? सीधा रखना पड़ेगा, उल्टा रखें? कटोरा रखने का कहा था आपने, हमने रख दिया उल्टा, रख दिया कटोरा उधर बाहर, तो भरेगा क्या? वो नहीं भरेगा। उसमें रिसेप्टिविटी होना चाहिए, उसमें पात्रता होनी चाहिए, उसमें कुछ एम्प्टी, कुछ खाली होना चाहिए जहां वो भर सके। और अगर हमारे भीतर पहले से ही कुछ भरा हुआ हो कचरा, एक राजा साहब क्या पहुंच गया था साधु, और उनसे कहा कि कुछ दे वो भिक्षा में। तो उन्होंने कहा कल देंगे, लेकिन आप मुझे पहले उपदेश दो कोई, तब तो हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि उपदेश भी हम कल ही देंगे आपको। और बस दूसरे दिन पहुंचे और उनके सामने कटोरा कर दिया, उस कटोरे में पहले से ही कचरा भरा था। तो राजा ने कहा कि अरे हम इस कटोरे में आपको भिक्षा में मिठाइयां देने वाले थे और इसमें तो कचरा पहले ही से भरा है, इसको पहले फेंक के आओ। तो मालूम साधु जी ने क्या कहा कि नहीं आप तो दे, आपको क्या मतलब इससे, हमारे कटोरे में क्या है आपको देने से मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी मिठाई बेकार हो जाएगी उस कचरे भरे हुए। तो मालूम साधु ने क्या कहा कि इसीलिए तो मैंने भी तुम्हें कल धर्म का उपदेश नहीं दिया था, पहले थोड़ा कचरा खाली करो अपने भीतर का, फिर हम तुम्हें धर्म देंगे। ठीक ऐसा ही ये धर्म है, हम कोई भी चीज बहुत अच्छी अपने भीतर लाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर जो बुरी चीजें हैं उनको अलग करना पड़ेगा, और अच्छी चीजों को लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे ख्याल से। बुरी चीजों को अलग कर दीजिएगा, अच्छी चीजें वहां हैं पहले से। क्षमा हमारा अपना स्वभाव है, क्रोध उसके ऊपर उसे विकृत करने वाली चीज। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को थोड़ा ढक लेता है, पूरा नहीं ढक सकता, क्योंकि हमारे स्वभाव को पूरा ढक लेगा तो नष्ट ही हो जाएगा। और दर्शनावरण कर्म है, ये भी बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है, वो भी सुख दुख देने वाला नाम वो आयु कर्म सॉरी वेदनी कर्म है, वो भी सारे कर्म ज्यादा बिगाड़ नहीं करते। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म ऐसा है जैसे कि ज्ञानावरणी कर्म तो ये है कि नुक्की का लड्डू बना था उसमें से थोड़ा सा मिला, दर्शनावरणी में भी थोड़ा सा मिला, लेकिन एक ऐसा लड्डू जो पूरा तो मिल रहा है पर उसमें विष पड़ा हुआ है। पूरा लड्डू खाने से पेट तो भर जाएगा पर मरण भी हो जाएगा। मोहिनी कर्म ऐसा ही है जो कि हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है, उसे विकृत कर देता है, हमारे स्वभाव को नष्ट कर देता है। वो कषायें इस मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो सब हमारे भीतर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि आप गुस्सा मत करें, क्या फायदा कहने से, कर तो पाएंगे नहीं आप ऐसा। मैं कहूंगा भी तब भी, मैं खुद भी अगर ये कहूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए तो ठीक है, एक आध दो दिन नहीं करूंगा, चार दिन नहीं करूंगा, 40 दिन नहीं करूंगा, कभी ना कभी तो मौका आएगा तब तो करूंगा, क्योंकि मेरे भीतर वो कषाय तो पड़ी हुई है। अब क्या करूं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में दो तीन बातें कर देने की हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, युधिष्ठिर का उदाहरण है, अपन नबी पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब लोग हमारे सामने नहीं हैं इसलिए एकदम हमको विश्वास नहीं होता कि इनने ऐसा करा भी होगा। युधिष्ठिर को सत्य बोलने के लिए कहा गया था, याद करो कि मैं सत्य बोलूंगा, उन्होंने याद ही नहीं किया 6 महीने तक। गुरुजी बहुत नाराज हुए, बहुत पिटाई करी, उसके बाद उनको 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि याद हो गया, क्यों, क्योंकि जो कुछ आपने मेरे लिए कहा है वो मैं अपने जीवन में उतार लूं तब तो उसको कहूं। ऐसा उनके जीवन की घटना आती है, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। मैं उस तरफ आपका इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम ये जान लें कि ये जो मेरे भीतर क्रोध है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। और अगर क्रोध है तो वो मेरी अपनी मजबूरी है, या मेरी अपनी कमजोरी है, या मेरी अपनी चॉइस है, या मेरी अपनी नियति है। देखें अपन इस तरह विचार करें, और क्रोध मुझे कितना करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये जरा डिसाइड कर ले, फिर देखो सारा काम हो जाएगा। हाँ बहुत मजे की चीज है, इतना भर करना है। क्रोध की वजह क्या है,
क्रोध की वजह और जो भी हो बहुत आंतरिक है, वाह्य में तो सिर्फ निमित्त मिलते हैं, बैठा तो सारा अंदर ही है। इसकी एक ही वजह है, अपेक्षाएं, जिसकी जितनी महत्वाकांक्षा होगी, जिसकी जितनी अपेक्षाएं दूसरे से होगी, वो उतने जल्दी क्रोध में गिर जाए, उतने जल्दी क्रोध कर दे। जितनी अपेक्षा होगी, मैंने सोचा था कि
जल्दी से सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं दूसरा काम करूंगा, वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा और फौजी भी मर लाएगा, लेकिन वो तो
थर्ड डिवीजन लाया, मुझे गुस्सा आ गया। बाजू वाले का फेल हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब गुस्सा नहीं आया। मैंने जिससे जो अपेक्षा कर रखी है उसकी पूर्ति नहीं होने पर गुस्सा आता, और कोई वजह नहीं है। वही अगर कारण है तो हमारी अपेक्षाएं हैं, और अंतरंग में तो हमारे क्रोध कसाए है ही। चले जा रहे थे एक जनाब उनके बेटे के साथ रस्ते में, तो जेब से रुमाल निकाला, उसके साथ 10 रुपये के नोट खिसक के नीचे गिर गया। उनने देखा नहीं, पीछे एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उठा करके और उनको 10 रुपये का नोट दे दिया। तो मालूम जिसने उठा के दिया था उसे तो दिया धन्यवाद, और बेटे का पकड़ा कान, क्यों रे कि चल रहा था मेरे साथ में, देख नहीं सकता था, 10 रुपये का नोट गिर गया। उस पर गुस्सा आ गई, क्योंकि उससे अपेक्षा थी, जिससे अपेक्षा नहीं थी उसने 10 रुपये का नोट उठा के दे दिया, तो थैंक, उसके लिए धन्यवाद। अब देखना मजा, थोड़ी देर और चले, अब की बार फिर रुमाल निकाला, अब की बार फिर एक नोट नीचे गिरा। बेटा बिल्कुल पहले से तैयार था, एक बार चोट खा चुका था, उसने फौरन खा के दिया, तो धन्यवाद तक नहीं कहा। हाँ तो तुम तो करोगे ही, और नहीं तो क्या। जिससे अपेक्षा होती है उससे कार्य की पूर्ति होने पर धन्यवाद के लिए मन प्रसन्न नहीं होता, और अगर पूर्ति ना हो तो अप्रसन्न जल्दी हो जाता है, नाराज जल्दी हो जाता है। ये क्या चीज है, ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो भैया इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि ज़्यादा दूसरे से अपेक्षा नहीं रखें, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भैया ठीक। जित परवस्ताम, परवस्ता को धिक्कार है, जहाँ जितनी परवस्ता है, जितने हम अपेक्षा रखेंगे उतना अधिक हम जो है परवश हो जाएंगे, और परवस्ता तो हमें क्रोध में ही ले जाती है, और फिर हम कर बैठते हैं, फिर हम अपने को संभाल भी नहीं पाते। मालूम पड़ गया कि अपेक्षा नहीं करनी। अब कई बार ऐसा होता है कि हो जाती है अपेक्षा, अब जैसे हमें आपसे अपेक्षा हो कि आप हमारी बात मानेंगे, और नहीं माने तो थोड़ी सी गुस्सा आएगी, फिर वो गुस्सा चेंज हो जाता है, दुख में बदल जाता है, दुखा है, दुख में ही बदल जाता है। कई बार क्रोध की कई वैरायटी हैं। एक तो होता है कि क्रोध आने पर हाथ पैर कांपने लगते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, वो एक बहुत बाहरी चीज है, ये अब आजकल नहीं होता, इतनी गुस्सा नहीं आती किसी को, अपना सिर मार लेंगे ज्यादा होगा दीवार से, या वीपिंग रोने लगेंगे, ये भी क्रोध का एक तरीका है। तो दुखी हो जाना भी एक क्रोध की वैरायटी है, दुख होने लगता है, अरे देखो
ऐसा क्यों कर दिया, क्रोध से भी दुख हो सकता है। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, मैं इस बारे में कभी फिर आपसे बात करूंगा, एकदम सहसा इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा विषय रह जाएगा, पर आता है। हम क्रोध के वशीभूत होकर के भी दुखी हो जाते हैं, हम क्रोध के वशीभूत होकर भी हंस लेते हैं, मजा देखिएगा। हाँ ये सब चीजें कसाएं किस रूप में आएंगे हम कह नहीं सकते। कई बार अपन कहते ना कि हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हैं क्या, इसलिए हंस रहे हैं क्या, इस तरह। तो क्रोध किस रूप में आएगा कहा नहीं जा सकता, पर हमारी अपेक्षा अगर है तो क्रोध जरूर आएगा, और उसके लिए करना क्या, मुझे
ये देखना है कि वो मेरी कमजोरी है, या कि मेरी अपनी च्वाइस है, मैं गुस्सा ही करना ही चाहता हूं, या कि मजबूरी में मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है, या गुस्सा मेरा स्वभाव है। तो हम पाएंगे कि नहीं, क्रोध करना हमारी कमजोरी है। लेकिन बड़ा मजा है, हमें ये लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमसे सिर पर बैठ जाएंगे अब भी, और देखने में भी आता है, तो क्या करें, करने लगे। हाँ माँ तो यही कहती है, पिता तो यही कहते हैं कि नहीं करें तो ये बिगड़त है, तनक जोर से बोल नहीं पड़त, अब उनको सुधार भी कि लाने, अपने आप को बिगाड़ रहेगी। तो ये सुधारते हैं का जो दूसरे को अपने को बिगाड़े, दूसरे को सुधार करें, हम स्वयं तो क्रोध करें, और अपन कह क्या देते हैं कि नहीं वो तो हम जो है दूसरे के उसको प्रेशराइज करने के लिए अपना टेरर क्रिएट कर रहे हैं, एक दहशत पैदा करके रखते हैं कि नहीं हमसे व्यक्ति जो है वो दब कर चले। ऐसा भी हम क्रोध कर लेते हैं, और ऐसा क्रोध करके हम क्रोध को अपनी नियति मान लेते हैं, क्या करें वो तो जरूरी है, वो नहीं करें अगर तो चलता नहीं भैया, काम नहीं चलता। महाराज जी की बात अलग है, महाराज जी ने करें तो उनको का अब ऐसे तो 17 काम है जो उनने जो कछु कही, सब कहां तक चिमाने चिमाने सब कछु करते रहे। देखना एक मन में आता है, भाव आता है, सबके मन में आता है कि कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे, एक सीमा होती है, तो फिर हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कर लो मतलब,
कंसोलेशन, एक सांत्वना दे लेते हैं, गुस्सा करके भी अपने को एक सांत्वना दे लेते कि हमने कभी सर अगर अपनी वो कौन हमें अकेले करा, सबको दुनिया कर रही ठीक ना। ये इतने सारे तरीके हैं करने के बहाने हैं, ये गुस्सा करने के बहाने हैं, ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हमें इस तरह के बहाने ढूंढने के लिए मजबूर कर लेती हैं और हम कर लेते हैं गुस्सा। चलो ये तो बात ही हमने समझ लिया थोड़ा सा कि गुस्सा ऐसे ऐसे आ जाता है और हम मजबूर हो गए हैं, हमारा एक संस्कार बन गया है, करें क्या अब, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करें गुस्सा को हम क्रोध दे, क्रोध को हम कर, गुस्से को हम एक दिशा दे, कसाईयों को जो दिशा दे देता है वो कसाईयों को जीत ले। सीधी सी बात, कसाई को ऐसे नहीं जीता जा सकता कि हमने कहा कि गुस्सा नहीं करना और आपने कहा है महाराज जी अब नहीं करें करें। ये तो फिर महावीर स्वामी और उसके पहले ऋषभ जी भगवान भी कह गए कोई नहीं मानी, संभव ही नहीं उसको दिशा दे सकते। एक होता है क्रोध दूसरे को हित के लिए, दूसरे को बिगाड़ के लिए, और एक होता है क्रोध दूसरे के लिए हित के लिए। बस इतना ही हम कर सकते हैं, जिससे हमारा और दूसरे का अहित हो ऐसा क्रोध नहीं करूँगा, जिससे कि दूसरे का हित हो वैसा क्रोध ठीक वो सात्विक क्रोध कर रहा है। देखो इतनी देर हो गई, 3 बज गए, अभी तक नहीं आ रहे तुम लोग, जल्दी तो आए। थोड़ी तेज बुला रहे बुला रही नहीं पाई थी तेजी, रहने दे रहा नहीं है जो उनको ध्यान कर नहीं है, आपको क्या फिक्र कर नहीं ले जाए समय। ये सात्विक क्रोध मैं जो है अभी अभी बेटा लौट करके आया हूँ, बस प्रयोग कर रहा था और भी भरम लगे भी जाएगी तो फौरन हाथ पकड़ लेके कहाँ जाए अभी खेल कर सकता है दूध पी लो। मुझे बताएं एक समय का आपके लिए गैस का चीला आ गया।
तो पहले तो अपन को खैर अपने जीवन में ऐसा एकाध बार घटित हुआ होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मैं तो फिर वो ज़्यादा कुछ गड़बड़ किया ना तो माँ मालूम क्या करती थी, वो चूल्हे में से थोड़ी एक लकड़ी बाहर निकालूं का। अपन बैठे उधर थाली पर और कुछ गड़बड़ किया कुछ तो धीरे से निकालूं क्या, निकालती विकालती नहीं थी। अब ये कौन सा क्रोध है, उसे कदम कदम पर करना पड़ता घर में काहे के लिए, भैया बिगड़े न भैया अच्छो बन जाए, पर कोई कोई वजह नहीं है। कहीं कहीं पर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भी माँ क्रोध करती है कि मेरी बात नहीं मानता, ऐसे अहंकार वसी करती,
लेकिन 999 मौके पर उसके सुधार के लिए करती है, बिगाड़ के लिए उसके नहीं करती है।
इस तरह भी अगर हम अपने जीवन में दूसरे के हित के लिए और कभी अपने मन में अगर ऐसा भाव भी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्रोध को हम दिशा दे दें। और इतना ही नहीं, जरा और विचार करें कि क्रोध कब करना है, जब चाहे तब, छोटी छोटी बातों पर, अरे नहीं ऐसे जब चाहे तब नहीं, सोच समझ के करूंगा, जब करना ही है गुस्सा तो जरा ढंग से करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे जब चाहे तब कर लिया तो लोग अपन को बुद्धू समझेंगे, किनको हमेशा क्रोध ही आते रहता, नहीं ढंग से करेंगे। अगर इतना भी हम सोच लें कि कब कब क्रोध करना है, किस पर करना है, सब पर तो नहीं करते हम क्रोध, हम देख लेते हैं कि हमारे क्रोध से ये प्रभावित होगा कि नहीं, जिस पर हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ता उसके सामने हम क्रोध कहाँ कर सकते हैं। रास्ते से चले जा रहे हो और एक पहलवान किस्म का आदमी अगर अपन को धक्का दे 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 बिल्कुल गुस्सा नहीं आ सका, नहीं तो ओवर मुश्किल हो जाएगी अब भी। और ग्राहक अगर 2500 दुकान में और कपड़ा पटक वाले जो फिर के अगर नहीं लेने तो गुस्सा नहीं कर सकते, मैं दुकानदारी बिगड़ जाएगी है। तो वहाँ तो हम कितना अच्छी किस पर करना है किस पर नहीं करना है कब कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में करना है और कितनी डिग्री का करना है, देखो भाई कितनी देर तक करना है अपने जी हर काम करे से कहते हैं, ऐसा सोच ले रहे हैं कि ज़्यादा नहीं थोड़ी देर 48 मिनट अगर उसका ड्यूरेशन है तो वो क्रोध सबसे हल्का क्रोध है। दिन भर भी चला कोई बात नहीं, रात सोने से पहले समय भाव धारण कर ले गए, दूसरा दिन आ गए तो वो बात समाप्त हो जाए, इतना कर ले गए ना सही
15 दिन के भीतर कर ले गए भैया, और अगर ज्यादा चले तो 6 महीना, 6 महीना से ज्यादा चलेगा तो संसार अनंत है, मिथ्यात्व के साथ जो कषाय है वो तो अनंत संसार का कारण बनती है। 6 महीने से अधिक भी ये जितने भी केस वेस लड़ते रहते ना अपन वकील लोग वगैरह, सारा मामला वही है, छह महीना नहीं, दो दो पांच पांच साल तक केस चल रहे हैं। अब तुम ऐसो करो, बे ऊसो कर हैं तो तुम फिर ऐसो करियो। अरे भैया बड़ा मुश्किल, नहीं लड़ो चाहे तो लड़वा देंगे वो। ये क्या है, ये उसका वासना काल छह महीने से ज्यादा चल रहा, नहीं ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, अचार नहीं डालना, मुरब्बा नहीं बनाना भैया, गुस्सा आ भी गई तो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बिल्कुल साफ जैसे आकाश में बादल घिरे, और उसके बाद आकाश क्यों कहते हैं सच निर्लेप। ऐसा ही नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक दो तीन चार उदाहरण सुना देंगे, सब समझ में आ जाएगी बात। कोई बहुत कठिन नहीं बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान आसान सी चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा अपन कर सकते हैं और करते भी हैं कई बार, लेकिन अगर अपन अपना स्वभाव ऐसा बना लें, अगर वो हमारे हैबिट में आ जाए तो फिर हमें आसानी होगी। किसी ने अगर हमारे मन की बात नहीं कही, कोई बात नहीं, ठीक। चार बातें हैं, जब दूसरे की सुनो भैया, जब एक अपनी सुनावे की गुंजाइश निकरत, जो तो सीधी सीधी रीत है। और अगर दूसरे की एक ही भी सहन न करो और अपनी सब उस करवाओ चाहो, कोई नहीं मानने वाला। एक उदाहरण देते हैं, अभी आई थी वो फैमिली, अब आपको हम परिचय बाद में भी हो सकता, अभी अभी होके गए हैं वो दो दिन पहले ही, उनके अपने जीवन की घटना। बहन ने आकर के मेरे से कहा कि महाराज घर में जो है बहुत विवाद हो जाता है, शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं तो बिना वजह जो है और क्रोध आ जाता है, हम थोड़े से सहन करते फिर उसके बाद सहन नहीं होता, तो हम भी कुछ कह देते तो बात बिगड़ जाती, फिर बाद में दो जने दुखी होते कि अपन ने कहा ऐसे इस तरह से किया, आप उपाय बताओ कि जी आया ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा ये तो बात है कि आप दो चार को सहन कर लेते, लेकिन हाँ दो चार बातें तक तो हम सहन कर सकते, फिर उसके बाद
हमें भी किया आते एक आध बात तो बिगड़ जाता मामला। हमने की तो फिर इतना करना, अब अगर वो आए और जैसे ही क्रोध किसी वजह से आ ही जाता, अच्छा क्रोध करने वाले को वजह भी मिल जाती, वो ढूंढ लेता है कहूँ न कहूँ से निकाल ले, भीतर भरा हुआ रहता। तो अब की बार ऐसा करना कि अगर चार पांच बातें कहें और जब सहन हो जाए सुत्ती कर लेना, फिर कहना कि देखो अब हाथ मुंह धो लो, अब फिर कह लियो थोड़ी देर बाद जे तो हमने सहन कर लेंगे, जब तक तनक हमें भी तनक ताकत आ जाएगी, ऐसा कह देना आप। अब वो बिल्कुल मजेदार बात हो गई, शाम को आए और सचमुच जो है गुस्से में और चार पांच बातें कहीं, इन्होंने भी धीरे से कहा कर ले अब हाथ मुंह धो लो, खाना वाना खा लो, फिर और जितनी रह गई उसके बाद में कह लियो। अब बस जैसे ही ऐसा कहा तो और ज्यादा क्रोध आ गया, क्या क्या कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे, महाराज जी से कहा था तो उन्होंने यही उपाय बताया, बस इतना जहां सुनना था कि पानी पानी हो गए, क्रोध जो है वो शांत हो गया। भैया
दो जनों में से जो क्रोध वालों काम एक बार में एक ही जनों करे, दूसरों ने करे तो बहुत आराम रहे, बस जा तय कर लो दो ही जने अपने बीच में कि जब अपन कर हैं तो अगर आप गुस्सा करो तो हमने करो और जब हम करें तो आपने करी हो, दो जने हैं तो दो जने जी तय कर लो, दो में से एक करे उस काम को और दूसरा न करे उस समय, फिर देखो आप कैसे आता है और कैसे हम नहीं जीत पाते हैं। हमें कषायों को ना स्वयं करना चाहिए, दूसरा करे तो उसमें और ईंधन नहीं डालना चाहिए, हमें दूसरे को कषाय करते देख करके मन ही मन दुखी होना चाहिए कि अपना अहित कर रहा है, मेरे निमित्त से ये कषाय कर रहा है, मैं उसमें निमित्त बन रहा हूं, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती, मेरे निमित्त से आप अपना अहित कर रहे हैं, आप अपना नरक निर्मित कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को शायद कमठ के जीप पर यही दया आती होगी कि मेरे निमित्त से तुम अपना संसार बढ़ा रहे हो कमठ, ये उनके भीतर इतनी इतनी संवेदना उनके भीतर जागती होगी, तब उनका तो कल्याण हो ही गया और उनके कल्याण को देख करके कमठ भी जो है शांत हो गया था, उसने भी उसी उपसर्ग के उपरांत सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और अपनी कषायों को जीत कर उसने भी मुक्ति पाई। हम एक दूसरे की कषाय में सहयोगी ना बने बल्कि एक दूसरे की कषाय का कम करने में सहयोगी बने, तो एक उपाय ये भी हो सकता है, इस तरह से हम चाहें तो वातावरण को एकदम हल्का कर सकते हैं। हमने
प्रभु का कबूतरों का काग तक सीमित लड़ गया, पहले भी पढ़ाया जाता था, गणधर का पढ़ाया जाता था, गणेश का पढ़ाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वह भी स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, गणधर और गणेश से नीचे उतरते उतरते गाय तक रह गया है और गा तो गाय से भी गा गधा तक पहुंच गया है। इस तरह से कहां रेस्तर हमारे लिए रसातल में ले जाएगा, इसकी और भी क्या हम चिंतित है। आज किसी बुजुर्ग से किसी पालक से कहा जाता है पाठशाला खोलने के लिए, उसके पास उसकी व्यवस्था के लिए तत्पर नहीं है। बच्चे के लिए स्कूल तो भेज देगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी भेज देगा, उसका भी पूरा खर्चा वहन करेगा, लेकिन आज इतनी बड़ी समाज में कहीं किसी के लिए पाठशाला के लिए कहा जाए तो वह उसकी व्यवस्था नहीं बना सकता। कोई पंडित जी नहीं है पढ़ाने वाले, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए तो एक नहीं 10-10 टीचरों की व्यवस्था हो जाएगी, उसके लिए पूरा खर्चा वहन कर देगा, लेकिन क्या उसका पूरा जीवन वहीं तक सीमित रह जाएगा। अगर हमने एक स्कूल की स्थापना की है लेकिन पढ़ाई की उसके लिए व्यवस्था की है तो धार्मिक संस्कार देने के लिए एक पाठशाला के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है, वह भी हमारे लिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और मात्र पाठशाला खुलकर के लिए नहीं।